शांति। तो आज का हमारा विषय है रावण दुश्मन और खुदा दोस्त, और ये टॉपिक की प्रेरणा आज की मुरली है, क्योंकि आज की पहली शिक्षा मीठे बच्चों को बाबा ने यही दी। क्या दी शिक्षा? कि रावण कौन है? तुम्हारा सिर्फ दुश्मन नहीं है, पुराना दुश्मन है, और उसके साथ जो तुम्हारी लड़ाई है कैसी है? बड़ी खौफनाक है। और जब लड़ाई खौफनाक हो तो अपने अस्तित्व का खतरा, लेकिन अपने अस्तित्व को बनाए रखना है तो ये लड़ाई बंद हो जाए, ऐसा कुछ उपाय करना पड़ेगा, इस दुश्मन को हराना पड़ेगा। और उस दुश्मन को, क्योंकि वो पुराना दुश्मन है, इससे जाहिर है कि बड़ा बलवान है, हम उसकी भेंट में कमजोर पड़ रहे हैं, तभी तो लंबा समय हो गया है वो दुश्मनी खत्म ही नहीं हो रही है। तो बलवान है और इसलिए हमें उससे ज्यादा बल की आवश्यकता है, और उससे भी ज्यादा जब हमें बल मिलेगा तो हम उसे हरा सकेंगे। और तब बाबा ने कहा, मेरे से योग लगाएंगे तो बल मिलेगा, और फिर उस बल से इस दुश्मन को हरा सकते हैं या इस पर जीत पा सकते हैं। तो पहली बात कि ये जो दुश्मन है पुराना है, कितना पुराना है, कितना पुराना है, 2500 वर्ष पुराना है। ये दुश्मन किस रूप में हमारे ऊपर वार करता है? क्योंकि बाबा कहते रावण माया। रावण क्या है? माया है, और माया माना विकार। तो विकारों के रूप में हम पर ये दुश्मन वार करता है। जीवन में चाहे कोई भी घटना हो जाए, सामने वाले ने मुझे दो शब्द बोल दिया, मैं कोई चाहती थी बात, परीक्षा में मुझे पास होना था, फेल हो गई, मुझे आशा थी कि ये मुझे मदद करेगा, इसने मुझे मदद नहीं की। तो जीवन में चाहे हमारे साथ कुछ भी हो जाए, तो वो जो हमारे साथ हुआ है क्या वो हमारे दुख का कारण होते हैं? हमें ये समझना पड़ेगा। दुख का कारण फलाने ने मुझे सहयोग नहीं दिया, वो है या कुछ और है? हाँ, आपके पास दूध वाला आता है और बिल्कुल फ्रेश ताजा दूध लेकर आता है, लेकिन आपने जिस बर्तन में वो दूध लिया वो खटास वाला बर्तन था, तो दूध उसने डाला वो फ्रेश था, वो ताजा था, वो साफ था, वो स्वच्छ था, कमी उधर नहीं है। जिसमें होल्ड किया उस दूध को, जिस पात्र में, कमी वहां थी, विकार वहां था, और इसलिए अच्छे खासे दूध को भी उसने क्या कर दिया, खराब कर दिया, फट गया। और हम दोष क्या देते हैं, ये दूध वाला है ना ऐसे ही दूध देता है, होता है नहीं होता है, वो फलाना दूध लाता ही नहीं ना, तो ये दूध खराब होता ही नहीं ना, तो ये बात होती ही नहीं। तो यहां समझने की बात, जैसे आजकल नेचर क्योर के अंदर, नेचुरोपैथी के अंदर हमें वो खाने की सजेशन दी जाती है कि नेचर हमें खाने के लिए जिस रूप में हमें देता है, हम उसी रूप में इस नेचर की बनी हुई शरीर को, बॉडी को दें तो हम स्वस्थ होने के चांसेस 100% है। लेकिन कई बार क्या होता है, क्योंकि एक तो नेचुरोपैथी में विश्वास पहले तो धीरे बैठता है, और अगर अपनी तकलीफ से निजात पाने के लिए किसी के कहे अनुसार कर भी लिया तो कुछ ना कुछ बहाने ढूंढ लेते ही हैं हम। हाँ, अरे फल खाना तो अच्छा है, नेचुरोपैथी वाले कहते हैं सुबह सुबह फल खाओ, लेकिन पता है मैं फल खाती हूं ना तो मुझे तो गैस हो जाता है। हैं, कई लोग ऐसे कहते हैं, नहीं कहते हैं? तो क्या फल खाने से गैस हुई है? फल खाने से गैस नहीं हुई है। किससे गैस हुई है? कि जिस पात्र में वो फल गया, आमाशय बोलते हैं, वो भी एक पात्र ही हुआ ना भाई। दूध का पात्र अपना है, हर चीज का अपना पात्र है, तो यहां से जो चबाया जाएगा वो किसी एक पात्र में ही तो जाएगा। तो कौन सा पात्र है वो, जिसे क्या कहते हैं? आमाशय। यहां से तो भोजन गया था, लेकिन भोजन में यहां से सलाइवा भी मिक्स हो गया, और जाते जाते जिस पात्र में गया, जिसको हम आम भाषा में पेट कहते हैं, तो जब भोजन हम ग्रहण करते हैं, भूख लगती है, मैसेज जाता है, तो अंदर अम्लों का स्त्राव भी आरंभ हो जाता है। तो यहां से हमने भोजन डाला, चबाया, सलाइवा भी मिक्स हुआ, फिर नीचे जाते हुए अंदर आमाशय में जो अम्ल है वो भी मिक्स हो गया, तो वो भोजन नहीं, उसमें सलाइवा और अम्ल आदि जो मिक्स हो गए उसको कहा आम। वो आम नहीं जो गर्मी में होता है, जो आमरस पीते हैं। हाँ, और इस कारण उसको आमाशय कहा गया। तो कहते हैं जब आपने फल खाया तो फल ने गैस पैदा नहीं किया, जिस पेट में आप वो डाल रहे हैं उसमें पहले का ही विकार मौजूद था, जो पहले खाया हुआ था वो अपच रूप में अभी तक वहीं पड़ा हुआ है, और जो आपने अच्छा खाया वो अच्छा और वो अपच माना सड़ रहा है अंदर, पच रहा नहीं माना, तो टॉक्सिन अच्छे में मिल गया तो क्या होगा? गैस बनेगी बनेगी। तो दोष फल का नहीं था, समझ में आई बात? दोष जो मैंने फल डाला अपने अंदर खाया उसमें नहीं है, लेकिन जिस पात्र में वो गया वहां पर ही पहले से टॉक्सिन था, वो मिक्स हो गया और इसलिए गैस बन गया। ऐसे ही हमारे जीवन में जो कुछ भी होती है घटनाएं, हम वस्तु के रूप में, व्यक्ति के रूप में, परिस्थिति के रूप में जो भी हमारे सामने आता है, हम अगर बॉडी कॉन्शियस में हैं तो क्या कहते हैं? इसके कारण हुआ है। ब्लेम दूसरे पर जाता है। लेकिन अगर हम सचमुच ब्राह्मण बने हैं, हम बाबा के जब तक नहीं बने थे तो शूद्र थे, बाबा का ज्ञान मिला तो ब्राह्मण बने, तो क्या अंतर है शूद्र में और ब्राह्मण में? शूद्र माना बॉडी कॉन्शियस वाली लाइफ, और ब्राह्मण माना सोल कॉन्शियस वाली लाइफ। लेकिन क्या सचमुच हम 24 घंटा सोल कॉन्शियस वाली लाइफ जीते हैं, या बॉडी कॉन्शियस और सोल कॉन्शियस में झूले झूलते रहते हैं? है ना? तो जिस घड़ी हम बॉडी कॉन्शियस में होंगे तो उस घड़ी जीवन में जो भी घटना घटेगी ब्लेम उस तरफ जाएगा। मेरे जीवन में दुख का कारण मेरे जीवन में आई हुई वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति। लेकिन अगर सोल कॉन्शियस में होंगे तो उंगली इधर, यहां तो आमाशय में टॉक्सिन पड़ा था और यहां पर चित्त, चित्त का दूसरा नाम है कर्माशय, चित्त का दूसरा नाम है कर्माशय से भोजन यहां से खाते हैं इधर जाता है, लेकिन यहां से भी भोजन जा रहा है, यहां से भी भोजन जा रहा है, यहां से भी भोजन जा रहा है, दृश्य के रूप में, ध्वनि के रूप में, स्पर्श के रूप में, गंध के रूप में, स्वाद के रूप में। इसको थोड़ी स्वाद समझता है, ये तो गोलमाल हो जाता है सब कुछ यहाँ पे। हाँ, स्वाद तो इधर, मतलब वो स्वाद जो अनुभव किया वो कहाँ जा रहा है? चित्त में, सबकॉन्शियस माइंड में। मन अनुभव करता है ना, और मन में जैसे कि स्लेट है, ब्लैक बोर्ड है, लिमिटेड स्पेस है उसमें, लिमिटेड स्पेस है ना। ब्लैक बोर्ड कितना बड़ा कर सकते हैं आप, स्लेट कितनी बड़ी कर सकते हैं, स्क्रीन कितनी बड़ी कर सकते हैं, चाहे मोबाइल की हो चाहे कंप्यूटर की हो, उसमें स्पेस लिमिटेड है। तो लिमिटेड होने के कारण वो थोड़ा ही समय वहां पे कोई भी चीज लिखेंगे या कुछ भी करें, थोड़ा समय के लिए, और थोड़ा समय के बाद कहां जाएगी, थोड़ा समय के बाद कहां जाएगी? अगर मोबाइल की स्क्रीन है, कुछ मैंने स्क्रीन पे टाइप किया है और मुझे चाहिए फ्यूचर रेफरेंस के लिए, तो मैं सेव बटन दबाती हूं तो अंदर मेमोरी में सेव हो जाएगा। कंप्यूटर में भी ऐसे ही, जब कंप्यूटर और ये नहीं थे, स्लेट थी, ब्लैक बोर्ड था, तो टीचर आके बोर्ड, ब्लैक बोर्ड पे लिख रहा था, हम अपने नोटबुक में लिख रहे थे। समझ में आ रही बात? वो लिमिटेड स्पेस है, उस लिमिटेड स्पेस पे जो कुछ भी लिखा जा रहा है वो परमानेंट नहीं रख सकते हैं वहां पे, क्योंकि उसको बार बार दूसरी नई बात के लिए हमें यूज करना है। तो उसको कहां कर देते हैं हम? अपने कॉपियों में, नोटबुक में, और कंप्यूटर की भाषा में मेमोरी में। ऐसे यहां पर मन की भाषा में, पहले मन पे था, मन कॉन्शियस माइंड में रहती बात, और अगर हमें चाहिए फ्यूचर रेफरेंस के लिए तो याद करते हैं, और याद करते हैं तो फिर कहां जाती है वो बात? सब कॉन्शियस माइंड में चली जाती है। तो उसको एक दूसरा नाम दिया गया है, कर्माशय। जैसे जलाशय माना क्या होता है? जलाशय का मतलब क्या होता है? हाँ, वो पात्र जिसमें पानी ठहरता है, है ना? ऐसे ही आमाशय मतलब जहां आम ठहरता है, कर्माशय मतलब जहां कर्म ठहरते हैं। लेकिन जलाशय में अगर कुछ कचरा डाल दिया तो, उसमें अगर कचरा हो, जैसे दूध के लिए भी बताया कि जिस पात्र में मैंने दूध लिया वो खटास से भरा हुआ था, और उसमें फिर दूध लिया तो क्या कर दिया? दूध की क्वालिटी खराब कर दी, जबकि दूध अच्छा था, दूध में खराबी कुछ भी नहीं थी। ऐसे ही कर्माशय में जो भी कर्म हो रहे, कर्म का फील्ड है वो, लेकिन उसमें क्योंकि कितने जन्मों का रावण से दुश्मनी है, 63 जन्मों की लड़ाई चल रही है, और कहां से रावण शुरू हुआ? बॉडी कॉन्शियसनेस से, द्वापर से, और उसी के परिणाम स्वरूप वहां हमने जलाशय में कचरा बोला, यहां पे विकार बोले हमने। बाबा ने कहा ना कि बॉडी कॉन्शियसनेस के परिणाम स्वरूप काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये सब उसके कारण उपजे। तो वो भी अगर मेरे कर्माशय में पड़े हैं, तो जब भी कोई जीवन में घटना घटेगी वो अंदर जाएगी और अंदर पड़े विकार उस घटना का इंटरप्रिटेशन दूसरे रूप से कर लेंगे। समझ में आ रही बात? और इसलिए जीवन में जो भी बात आती है, जिस भी रूप में आती है, हम उसे उसी रूप में लें, उसके लिए जरूरी है कर्माशय रूपी पात्र में विकार जो पड़े हैं उनका सफाया कर दें। उनका क्या कर दें? हाँ, जब एक बार समझ आ गई कि खट्टाई वाला बर्तन था तो दूध खराब हो गया, नेक्स्ट टाइम से सबक सीख लिया कि खटाई वाले पात्र में कभी भी दूध नहीं लेना है, या फिर उस पात्र को इतना अच्छी से साफ कर लें कि उसमें उस खटाई का अंश भी न रहे। तो बात है रावण को जीतने की। क्यों? क्योंकि खौफनाक लड़ाई कर रहा है, हमारे अस्तित्व खतरे में है। तो ये खौफनाक लड़ाई से बचे, इसके लिए हमें जरूरी है माया जीत बनने की। क्योंकि बाबा कहते हैं माया जीत सो जगत जीत। अब माया को जीतना माना इन विकारों को जीतना। अब इन विचारों का खात्मा कर देना है टोटल, या परिवर्तन करना है, ये सोचने का विषय है। गणपति के दिन चल रहे हैं तो शिव जी ने आके गणपति, जिसने अपने पिता को नहीं पहचाना, तो शिव जी ने क्या किया? हत्या की या गला काटा? क्या बोलेंगे? हत्या माना खत्म, गला काटा। और काट के फिर क्या किया गया? दूसरा वाला लगाया गया। ऐसे ही बाबा कहते हैं ये जो माया है, माया के पांच विकार हैं, इनकी हत्या नहीं करनी है हमें। क्यों? इसको बहुत अच्छी से समझना है, हम कर भी नहीं पाएंगे। क्योंकि अगर वो उसका हत्या ही कर दिया होता गणेश जी का, तो फिर बात कुछ करने को रह नहीं जाती। वास्तव में वो गणेश जी क्या था? देहाभिमान का प्रतीक था। देहाभिमान का गला काटा और उसकी जगह पे आत्माभिमानी, और आत्माभिमानी माना ही दिव्य बुद्धि। पहले हमारी बुद्धि कैसी होती है? भौतिकतावादी, मटेरियलिस्टिक होती है। लेकिन उसको फिर दूसरी सिर लगाया, माना दिव्य बुद्धि दी। तो बुद्धि, बाबा ने आके हमें दिव्य बुद्धि दी, इसका मतलब ये नहीं कि हमारे पास बुद्धि नहीं थी। बुद्धि थी लेकिन मटेरियलिस्टिक थी, भौतिकवादी थी, जिसको सिर्फ भौतिकता समझ में आती है, जीवन का सत्य नहीं समझ में आता जिसको, कि मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, किसलिए आया हूं, कहां जाना है, ये उसको नहीं समझता था। लेकिन बाबा ने दिव्य बुद्धि दी, माना ये सब समझ में आना लग गया। तो क्या किया? परिवर्तन किया। ऐसे ही इन विकारों का हमें परिवर्तन करना है। क्यों? उसका खात्मा नहीं करना है। क्यों? विकार अपने आप में क्या चीज है, बता सकते हैं? विकार अपने आप में क्या चीज है? देखो टेप रिकॉर्डर, हाँ अभी टेप रिकॉर्डर का जमाना नहीं है, पर बात समझने के लिए उदाहरण रखती हूं। आपके पास एक टेप रिकॉर्डर है और वो बैटरी पर चलता है। आपने अपने पसंदीदा मधुर गीतों के कैसेट लेकर आए और उसमें डालकर प्ले बटन दबाया और गीत बज रहे हैं और आप अपने काम में व्यस्त हैं। कैसेट है 30 या 45 मिनट की उसकी अवधि होती है, ड्यूरेशन होता है, बज के क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। लेकिन चूंकि वो सुनते सुनते मेरा काम कैसे निपट रहा था मुझे समझ में नहीं आ रहा था, मतलब हल्के रूप में था, तो हमने सोचा फिर से प्ले करते हैं। फिर से प्ले किया, फिर 45, 30, 40 जो भी ड्यूरेशन है आके फिर खड़ा। ये सिलसिला मैंने दिन भर जारी रखा, प्ले स्टॉप प्ले स्टॉप प्ले स्टॉप होता रहा। चल रहा किस पर है, बैटरी पर। बैटरी क्या हो रही है, जब बैटरी फुल्ली डिस्चार्ज हो जाएगी तब तो वो स्टॉप हो ही जाएगा, लेकिन बिफोर फुल डिस्चार्ज के क्या स्थिति होती है, नोटिस की है किसी ने, क्या होती है, रोने लगता है। हम तो कहेंगे रोने से भी उसकी बदतर हालत होती है। कैसी होती है, जैसे कोई पिया हुआ आदमी बड़बड़ बड़बड़ कर रहा नहीं, ऐसी होती है नहीं होती है। अगर हम समझदार हैं तो हम समझ जाते हैं ये बैटरी डिस्चार्ज होने के कारण ऐसे हुआ है, हम बैटरी चार्ज करते हैं। लेकिन अगर ये समझदारी ये नॉलेज नहीं है, डर जाते हैं, अरे क्या हुआ मेरे टेप रिकॉर्डर को, ऐसे कैसे खराब हो गया, मैंने तो कुछ किया नहीं, मैं तो सिर्फ सुन ही रही हूँ और तो कुछ किया नहीं, डर जाते हैं और सहमे सहमे रहते हैं। हाँ, और घर में पापा आके देखे बच्चा क्यों सहमा बैठा है, मम्मी ने तो डांट लगाई थी, आने दो तेरे पापा को, सुनाती हूँ अभी इसको, कुछ मत लेके दो, एक दिन में सब खराब कर देता है, कब से मना कर रही थी। सहमा तो था बेचारा, लेकिन पापा ने आके बच्चे का सहमा रूप देखा, क्या हुआ बेटा, पापा आप डांटोंगे नहीं ना मेरे को, बेटा क्या हुआ, पापा टेप रिकॉर्डर खराब हो गया। और पापा को समझ थी और पापा को बच्चे का वह सहमा हुआ चेहरा अच्छा नहीं लग रहा, टेप रिकॉर्ड खराब हो गया, मैं अब भी ठीक करके देता हूँ, दूसरी वाली चार्ज वाली बैटरी डाल दी, देख फिर से कैसे बजने लगा, जैसे पहले बज रहा था। अब हमारा सवाल आपसे ये है कि उस कैसेट में सारा ही मधुर संगीत भरा था जो बैटरी चार्ज करने के बाद फिर से मधुर मिला, लेकिन जहां पर बैटरी अबाउट टू डिस्चार्ज तक पहुंची थी, अभी पूरी डिस्चार्ज नहीं, थोड़ा, वहां पर जो आवाज आई वो आवाज तो इसमें रिकॉर्डेड थी ही नहीं, आई कहां से, वो तो थी ही नहीं, हमने दोबारा फिर से जब चार्ज बैटरी लगाई तो वो आवाज तो आई ही नहीं, तो वो कहां से आ गई थी वो आवाज। इसको ही विकार बोलते हैं, जो था नहीं पर आ गया, इसको विकार बोलते हैं। और खुलासा क्या करूं मैं इसका, कि देखो मैं आपके साथ अभी बात कर रही हूं, बोल रही हूं, बोलना मना क्या होता है एक्चुअली, अभी यहां से आवाज जा रही है, रिकॉर्डिंग होगी, रिकॉर्डिंग में क्या होगा, शब्द रिकॉर्ड हो रहे हैं वहां पे, क्या रिकॉर्ड हो रहा है वहां पे, शब्द रिकॉर्ड हो रहे हैं या शब्दों के कारण से जो वेव पैटर्न तैयार हुआ वो रिकॉर्ड हो रहा है। हाँ, क्योंकि देखो ये क्या है, खाली स्पेस है, और बोलना का मतलब क्या होता है, बोलने का इतना ही मतलब होता है लिप्स को, होठों को हिलाना, जबड़ों को हिलाना, जीभ को घुमाना, यही होता है ना बोलना मतलब। इसलिए देखो बचपन में कैसे होता है, जब बचपन में ABCD हम बच्चों को सिखाते क ख ग, तो कोई कोई प्रोनाउंसिएशन ठीक नहीं आता है तो हम दिखाते ऐसे बोल ड बोलते हैं ना, तो है क्या, किस प्रकार से कहां से आवाज निकालना है, बोलना उसी को बोला जाता है, और क्या करते हैं, हाँ बताते ऐसे नहीं, ऐसे बोलो ब, इनको मिलाओ दोनों को, यही तो बोलते हैं ना। तो लिप्स की मूवमेंट, जॉ की मूवमेंट, टंग की मूवमेंट, कहां कौन से स्थान से जोर देकर निकालना है आवाज, तो आवाज माना वही तो है और तो कुछ नहीं है। तो जब हम ऐसे मूवमेंट कर रहे हैं, ये जो खाली स्पेस है उसमें जो पार्टिकल्स है उनको मूवमेंट मिल रही है, हमारे जबड़ों की मूवमेंट, लिप्स की मूवमेंट, टंग की मूवमेंट, वहां पे जो खाली स्पेस में पार्टिकल है उसको मूवमेंट प्रदान कर रहे हैं। और फिर बाहर भी तो खाली स्पेस है ना पार्टिकल से, उसको मूवमेंट दे रहे हैं, और वही तो वहां पे जाके छप रहा है। और वही फर्ज जब रिप्ले करेंगे तो जिस प्रकार के हमने मूवमेंट की थी उस समय जो आवाज निकली थी वही आवाज देगा, माना वही शब्द आएंगे। समझ में आई बात यहां तक? अब आगे बढ़ते हैं कि जब हम ये आवाज रिकॉर्ड कर लेते हैं और जिस प्रकार की आवाज थी उसी रूप में उसको रिकॉर्डेड को हम सुनना चाहते हैं, उसके लिए जरूरी है रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ चार्ज। उस कैसेट को, उस प्लेयर को एक रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ चार्ज पहुंचना चाहिए, तब वो जैसा रिकॉर्डेड है वैसा ही आवाज देगा। हम अगर रिक्वायर्ड से ज्यादा दे देंगे तो भी आवाज बदलेंगे, रिक्वायर्ड से कम देंगे तो भी कम माना आवाज। इसीलिए जब आप फास्ट रिवाइंड करते हैं तो क्या होता है, चिक 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 होती है, नहीं होती है, बदल जाता है ना। तो अबाउट टू डिस्चार्ज वाली स्टेज में क्या हो रहा था, जितना अमाउंट में चार्ज वहां पहुंचना चाहिए था उससे कम होता जा रहा है, और इसलिए वो आवाज, आवाज मतलब वो वेव पैटर्न समझो ऐसी रही होगी या ऐसी ऐसी हो गई होगी, डिस्टॉर्ट उसका विकृत रूप हो गया ना। फिर वो भाई वेव रिकॉर्डेड थी ऐसी ऐसी, और अमाउंट ऑफ चार्ज जितना चाहिए था उतना नहीं मिला, तो इसकी विकृति बदल गया वेव पैटर्न। तो ऐसे ही हमारी ओरिजिनल आत्मा क्या है, जो हम सेवन क्वालिटीज की बात करते हैं कि आत्मा सतोगुणी है, मतलब क्या है, हम कहते हैं ना आत्मा एक ऊर्जा है, कहते हैं ना चैतन्य शक्ति है, प्रकाश का पुंज है, सतोगुणी है, वो सात गुण हम बताते हैं और वही हम सिखाते हैं कोर्सेस में कि सुख शांति को बाहर नहीं ढूंढना है, सुख शांति आपके भीतर है। ठीक है सुख शांति मेरे भीतर है, पर क्या है सुख शांति, है क्या सुख शांति बता सकते हैं, क्या है सुख शांति? देखो अभी जो हम सुनते हैं, हाँ समझो मैंने कहा कि प्लेयर में कैसेट डाल दी या सीडी, जो भी आपके पास जिस प्रकार का भी साधन है, और कोई गीत बजा और गीत बजकर एक साइलेंस की फीलिंग आई मुझे, तो हमने कहा ये गीत से ना बहुत साइलेंस का अनुभव होता है। फिर एक दूसरा गीत बजा और ऐसे लगने लगा पैर थिरकने लगे, डांस करने के मूड में आ गए। फिर कोई ऐसा लेक्चर बजा या प्रवचन व्हाटएवर कि जिसको सुनकर जो मैं अंदर से अपने आप को टूटा हुआ महसूस कर रही थी, एकदम से मेरे अंदर हिम्मत आ गई, हौसले बुलंद हो गए। या कोई एक दूसरा प्रवचन या लेक्चर सुना होगा कि किसी बात को लेकर मेरे मन में कंफ्यूजन था, क्लैरिटी नहीं थी, लेकिन वो सुनने के बाद मैंने अच्छा तो ये बात ऐसी होती है, पहले मुझे समझ में नहीं आता था, ये सुनाना अब मुझे समझ में आ गया। होता है ऐसा हमारे साथ? अगेन वो गीत जिसको सुनकर साइलेंस का अनुभव किया, वो गीत जिसको सुनकर नाचने का मन किया, वो लेक्चर या प्रबोधन जो सुना और हिम्मत आ गई या बोध आ गया, वो क्या था असल में? वो भी एक वेव पैटर्न था। अभी ये हम बोल रहे हैं ना, उसमें क्या होगा? वेव पैटर्न ही होगा और कुछ होगा? तरंगे ही होगी ना, प्रकंपन ही होगे ना। तो कोई प्रकंपन का जो पैटर्न था, उसका पैटर्न का रिजल्ट था मेरे को साइलेंस की अनुभूति हुई, और तब फिर हमने उसमें लिख दिया ये शांति का गीत है। जब शांति की जरूरत होगी ना, अपन ये वाला गीत बजाएंगे। और जो गीत सुन के नाचने का मूड हुआ, तो अपने का इसको है ना डांस लिख दो, इसमें खुशी लिख दो। तो जब अपन प्रोग्राम करेंगे ना डांस वाला, तब ये वाला गीत बजाएंगे। जब हम हिम्मत टूट जाएगी, हम ये वाला लेक्चर सुनेंगे, तो इसको हिम्मत लिख दो। यही करते क्या करते हैं? पहचान के लिए ये नाम ही तो डालना होता है, अदरवाइज वहां पे है क्या? वेव पैटर्न है, अलग अलग प्रकार का वेव पैटर्न, अलग अलग एहसास तेरा है। कोई हिम्मत देके चले जाता है, कोई शांति देकर चला जाता है, कोई उमंग में लेके आ जाता है, कोई सत्य का बोध करा जाता है। तो अल्टीमेटली है तो वेव का पैटर्न, तरंगों का एक पद्धति। तो ऐसे जब आत्मा सतोगुणी हम कहते हैं, अर्थात आत्मा भी बंडल ऑफ वेव पैटर्न है। आत्मा एक ऐसी ऊर्जा है जो बाय डिफॉल्ट, एक होता है आप नया मोबाइल खरीदो या कंप्यूटर खरीदो, तो उसमें कुछ पहले से ही क्रिएटेड फाइल्स होती हैं, ऑडियो वीडियो होता है ना, फिर हम क्रिएट करते हैं, पहले से कुछ सैंपल के रूप में होती है, फिर हम क्रिएट करते हैं। तो आत्मा में बाय डिफॉल्ट सेल्फ क्रिएटेड है, वो इनेट जिसको बोलते हैं ना, इनेट क्वालिटी जिसको हम कहते हैं आत्मा के निजी गुण, कि हमने तैयार नहीं किए, वो बने बनाए हैं। अर्थात आत्मा के पास ऐसे सात पैटर्न है वाइब्रेट होने के, कि एक एक पैटर्न एक एक अनुभूति कराता है, और एक एक अनुभूति को हमने एक एक नाम दे दिया। भाई इस अनुभूति का नाम शांति है, इस अनुभूति का नाम खुशी है, इस अनुभूति का नाम आनंद है, इस अनुभूति का नाम शुद्धि है, इस अनुभूति का नाम शक्ति है। ये हमने नाम दे दिए, है तो अनुभूति ना। अब जैसे बाबा कहते हैं कि आत्माएं, जैसे कहा ना बैटरी डिस्चार्ज होने के कारण वेव पैटर्न में विकृति आई, ऐसे ही हम आत्माएं जब परम धाम घर से नीचे उतरे, तो बैटरी 100% चार्ज, लेकिन नीचे उतरने के बाद कम हुई ना, कम कम, और उसका इफेक्ट आया कि द्वापर आते आते वो वेव पैटर्न में डिस्टॉर्शन, जिसको कहेंगे विकृति, आना आरंभ हुई। और उसी विकृति को, जैसे इन अनुभूतियों को हमने शांति प्रेम खुशी दिया, इनको हमने कहा काम क्रोध लोभ मोह अहंकार। क्लियर हो रही है बात? अब बाबा कहते हैं इनको परिवर्तन करना है, क्योंकि आत्मा तो एनर्जी है ना, एनर्जी को ही खत्म कर डालोगे तो फिर काम कैसे चलेगा। इसीलिए कहा कि खत्म नहीं करना है, बल्कि इनको परिवर्तन करना है। इसीलिए गणेश जी का शीश काटा गया, हत्या नहीं की गई, उसको खत्म नहीं किया गया। देह अभिमान को निकाल के आत्म अभिमानी बनाया गया, भौतिक बुद्धि को कट करके दिव्य बुद्धि डाली गई। तो ऐसे ही हमें भी बाबा कहते विकारों का परिवर्तन करो, और जब विकारों का परिवर्तन करेंगे माना ही हमने उन पर जीत पाई। और बाबा कहते हैं जनरली नियम ये होता है कि जो विजयी बनता है तो जिसको उस विजेता ने हराया है वो उसके अधीन हो गया, उसको बंदी बना देते हैं। ऐसे ही करते हैं ना, बंदी बना देते हैं, गुलाम कर देते हैं। बंदी बना गुलाम ही हो गया ना। तो बाबा कहते हैं तुम इनको बंदी नहीं बनाना। क्यों? अगर बंदी बनाया भी तो जेल में बैठे बैठे सब आपस में फिर मिली भगत करके कुछ एक नया बम फेंक सकते हैं। कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? और इसीलिए बाबा कहते हैं इनको सहयोगी बना दो, बंदी भी नहीं बना। और इसीलिए कहते बंदी बनाना मतलब ही दबाओ नहीं इनको, क्रोध आ रहा है लेकिन दबा के रख दिया, मोह आ रहा है लेकिन दबा के रख दिया। तो बंदी जैसे कहा कि बंदी तो बना दिया लेकिन बीच बीच में उछल के बाहर आ जाएगा और पहले से भी ज्यादा नुकसान कर देगा, पहले से भी ज्यादा नुकसान कर देगा। और इसलिए बाबा कहते बंदी नहीं बनाओ, सहयोगी बनाओ। तो कैसे? कि अगर जिसको हराया वो समझो राजा था, जिसको मैंने हराया, हराने से पहले वो राजा था लेकिन मैंने उसको हराया, तो मैं उसको क्या कर दूं? साधारण प्रजा के लेवल में रख दूं उसको। समझ में आई बात? जिसको हराया वो मंत्री की पोस्ट पे था समझो, अब उसको क्या करूं? एक साधारण व्यक्ति की जगह पे लाके रख दूं, तो उसके भी जीवन ठीक चलेगी ना। वरना बंद बना के रख दो, तो बंदी बना के रख दो तो उसके वो भी तो सफोकेशन होगा ना। तो सफोकेशन होगा तो क्या करेगा? हमारे लिए खतरा पैदा करेगा। और इसलिए बाबा कहते हैं इनका परिवर्तन करो, और इस परिवर्तन के लिए चाहिए क्या चाहिए? बाबा ने पहला परिवर्तन क्या किया हमारा? देह अभिमानी की स्मृति में जी रहे थे का आत्माभिमानी होकर जियो। तो जब आत्माभिमानी होकर जिएंगे तो परिवर्तन क्या होगा? ये सारी मुरली 26/12/1979 की है, उसमें सारा ये डिटेल है कि काम विकार को, काम आएगा विकार के रूप में, दुश्मन के रूप में, उसको हमें दोस्त बनाना है। हमारे पर वार करेगा लेकिन वार के बदले हमें उसका ऐसा रूप परिवर्तन करना है कि वो हमें विश्व सेवाधारी का रूप बन जाए हमारा। तो क्या करना पड़ेगा उसके लिए? बाबा कहते हैं जब भी काम विकार मतलब कामनाएं जागे, तुरंत आप अगर आत्माभिमानी स्थिति में हैं तो कामना के सामने शुभ शब्द लगा दो। कामना करने के बजाय क्या करो? शुभ कामना करो। तो काम विकार क्या हो जाएगा? दुश्मन के बदले दोस्त बन जाएगा। जो मेरे पुरुषार्थ में विघ्न रूप बनकर खड़ा हो रहा था सहयोगी बन जाएगा। जो मेरे को हराने के लिए बार बार वार कर रहा था अब बल्कि मुझे शुभकामना माना, सबके लिए शुभकामना रख दी तो विश्व सेवाधारी रूप हो गया ना। तो पूरा खेल है ब्राह्मण जीवन का। प्रश्न क्या था आज का बोलो, प्रश्न क्या था आज का प्रश्न, आज की मुरली का प्रश्न क्या है बोलो। ब्राह्मणों का डिपार्टमेंट मनुष्यों से अलग है। कैसे? तो तुम ब्राह्मणों का डिपार्टमेंट है श्रीमत पर चलना, और श्रीमत पर चलकर पवित्र बनना भी और बनाना भी। और क्या कहा, और क्या कहा हमने? कहा ना रिवीजन है ये, भट्टी में नया कुछ नहीं सीखना है। तो बाबा की मुरली को रिवाइज करते जाना है हमें। दुनिया वाले तो जो कुछ भी करते हैं उसे और पतित होते जाते हैं, नीचे गिरते जाते हैं, लेकिन तुम वो दोनों बातें कही, चाहे जो कुछ कर डाले नीचे गिरते हैं, यहां तक कि रिद्धि सिद्धि भी अपना ले तो भी और पतित ही बनते जाते हैं, जबकि तुम क्या होते हो, पावन बनते जाते हो। फर्क है ना, यही बात कही ना। तो क्या अंतर है दुनिया वाले में और ब्राह्मणों में? ब्राह्मण माना ही सोल कॉन्शियस वाली जीवन, ब्राह्मण माना ही कामनाएं जगे तुरंत उसको रिप्लेस कर दे शुभ कामना से। कैसे करेंगे भाई, बोलने मात्र से थोड़ी होता है। तो आत्माभिमानी स्थिति माना क्या? सिर्फ मैं आत्मा, ये आत्मा, इसको सिर्फ आत्माभिमानी स्थिति नहीं बोलते हैं। आत्माभिमानी स्थिति माना आत्मा जो 7 क्वालिटीज है, सतोगुणी है, वो भी फ्लो होती रहे, वो वाइब्रेट होती रहे, वो बहती रहे, उसका प्रवाह भी चारों तरफ फैलता रहे। अब उस प्रवाह में ज्ञान भी एक प्रवाह है, सतोगुणी में मैं आत्मा ज्ञान स्वरूप भी हूं ना। तो जब कामनाएं जगे तो मैं तुरंत ज्ञान को यूज करूं। इन कामनाओं ने जीवन का क्या हाल किया है? इन कामनाओं का तो कोई अंत नहीं। एक कामना पूरी होती नहीं, दूसरी कामना रेडी होती है, दूसरी कामना पूरी होती नहीं, तीसरी। तो इनका तो कोई अंत नहीं है। और जो कामनाएं हैं वो कौन सी है? भौतिक जगत से संबंधित है। और ये भौतिक देह, हाँ, भौतिक आंखों से जो कुछ दिख रहा है वो सब कुछ यही कहीं धरा रह जाएगा। चलना क्या है साथ में? आत्मा इस देह को छोड़ के चली जाएगी, और इस देह के रहते यहाँ पर आके जो किया कर्म और संस्कार के रूप में साथ में चलेगा। तो इतना भीतर में चिंतन चला चला कर अपने आप को कामनाओं से दूर करके शुभ कामना की तरफ मोड़ देना। जहां शुभ शब्द आया माना ही वो मुझे इशारा दे रहा है आत्म कल्याण की कामनाएं करो। तो ये परिवर्तन लाना है, दबाने से काम नहीं होगा। और वो खुदा दोस्त हमें सिखाता है, सच्चा दोस्त क्या होता है? सच्चा दोस्त, आपका अस्तित्व अगर खतरे में है तो आपको वही मदद करेगा ना जो आपका अस्तित्व बना रहे। कोई आपको हरा रहा है वो खुदा दोस्त क्या करेगा? आप विजेता बनो यही सिखाएगा ना। तो माया जीत तभी बनेंगे जगत जीत। तो माया जीत मना माया के 5 विकारों को परिवर्तन करना है। उस मुरली में पूरा डिटेल है ये कि काम विकार शुभ कामना के रूप से आपका सहयोगी बन जाएगा, आपका दोस्त बन जाएगा, आपका स्वरूप विश्व सेवाधारी का बना देगा। क्रोध विकार आता है तो क्या होता है? क्रोध विकार आता है तो क्या होता है? ईश्वरीय संपत्ति जो हमारी सुख शांति है वो जल जाती है, लेकिन ये क्रोध विकार क्रोधाग्नि के बदले मैं तुरंत योगाग्नि में बदल दूं तो, योगाग्नि में बदल दूं तो पापों को जलाएगी। यहां पाप क्रिएट कर रही है, लेकिन क्रोध को अगर, तो क्रोध क्या है? जोश है एक। तो बाबा कहते क्रोध को तुरंत अटेंशन रहे, में आय का भी संस्कार है ना। भीतर चित्त में कर्माशय में ये संस्कार पड़े हैं, उठ के आएंगे, लेकिन अटेंशन वाली लाइफ चाहिए। इसीलिए तो अटेंशन नहीं होता तभी तो हम बॉडी कॉन्शियस बन जाते हैं ना? और इसीलिए बाबा कई बार कहता है मुरली में, नहीं बच्चे तो सारी बातें बाबा से कहते हैं ना, तो जल्दी क्या होता है अपने से पुरुषार्थ नहीं होता है उतना, तो हम दूसरों की कमियों पर नजर डाल देते हैं। तो हम क्या कहते हैं, समझो मेरे में गुस्सा है, अभी मेरा गुस्से का संस्कार गया नहीं है और कोई मुझे उसके लिए कह देता है, तो हम क्या करेंगे अपने को छुपाने के लिए, देखा है मैंने, महारथियों को भी देखा है मैंने, वो तो हमसे भी ज्यादा गुस्सा करते हैं, और बाबा तो सब सुनता रहता है और मुरलियों में आंसर करता है। और बाबा ये बात कहता है मुरली में, कई बच्चे कहते हैं हमने महारथियों को भी देखा है, और बाबा उसके बाद क्या कहते हैं, जिस समय कोई गुस्सा कर रहा है वो महारथी है ही नहीं। तो आप ये कह ही नहीं सकते हो कि हमने महारथियों को गुस्सा करते देखा है। महारथी माना क्या? महान रथी, रथी माना रथ को चलाने वाला, और जो गुस्सा कर रहा है उसको महान रथी आप कैसे बोल सकते हो? मतलब आप उस समय क्या हो गए हो? साधारण बन गए हो, स्लिप हो गए हो। तो ये अटेंशन वाली लाइफ चाहिए। अभी जो वर्तमान में हमारे को पुरुषार्थ करना है, लोग पूछते रहते हैं ना, क्या पुरुषार्थ, क्या पुरुषार्थ, क्या पुरुषार्थ, सिर्फ और सिर्फ अटेंशन वाली लाइफ चाहिए। बार बार इधर चेकिंग होती रहे, मैंने अभी कर्म किया, मैं बॉडी कॉन्शियसनेस में स्लिप होके कर लिया, ऐसे कैसे मेरा ध्यान स्लिप हो गया, मुझे कहा है मैं तो ब्राह्मण हूं ना, तो मैं ब्राह्मण हूं तो मेरी कौन सी स्थिति होनी चाहिए थी? आत्माभिमानी स्थिति होनी चाहिए थी, और आत्माभिमानी स्थिति में हम कभी गर्म हो सकते हैं क्या? लेकिन मैं गर्म हो गया मतलब क्या हुआ? स्लिप हो गए ना, तो अटेंशन का पहरा बढ़ाना पड़ेगा। ये है वर्तमान पुरुषार्थ। तो बाबा कहते जोश आएगा आदत के अनुसार, लेकिन अटेंशन रहेगा, उसको रूहानी जोश में बदल दो, उसको रूहानी खुमारी में बदल दो। रूहानी खुमारी, तो ये जोश इधर जा रहा था उसकी दिशा बदल दी मैंने, खुमारी ऐसी चढ़ाई, चलो परमात्मा से कनेक्ट हो जाते। योगाग्नि को तैयार किया, यहाँ पाप क्रिएट हो रहा था वो रुक गया, अंदर जो पहले के पाप है वो भी चल गए। समझ में आ रही ना बात? तो परिवर्तन का काम करो, दबाने का काम नहीं करो। ऐसे ही लोभ आए तो ट्रस्टी रूप को धारण कर लो, बेहद की वैराग की वृत्ति को धारण करो। और बेहद की वैराग वृत्ति का मतलब क्या होता है? वैराग मतलब क्या होता है? जो चीजें छूटने वाली है उनसे राग हटा लो, और जो चीजें साथ चलने वाली उनसे राग जोड़ लो। सुख शांति प्रेम शांति के संस्कार ही तो अगली लाइफ को अच्छा बनाएंगे, कि काम क्रोध को लेके जाएंगे तो अच्छी लाइफ अच्छी बनेगी अगली लाइफ। हाँ, तो जो चल के मेरी नेक्स्ट लाइफ को भी, इस लाइफ को भी अच्छा बना रहा है और अगली लाइफ को भी अच्छा बनाएगा, उसके प्रति राग, उसको कहते हैं वैराग्य। तो ट्रस्टी रूप में बदल दो तो फिर क्या होगा, लोभ आएगा। ट्रस्टी रूप अगर ले लेंगे तो जब लोभ होता है तो चाहिए चाहिए करते हैं। चलना कौन सी दुनिया में है, इच्छा मात्रम अविद्या की दुनिया में। तो ट्रस्टी रूप धारण करेंगे तो मेरा इच्छा मात्रम अविद्या वाला स्वरूप इमर्ज हो जाएगा, प्रकट हो जाएगा। जो चाहिए चाहिए कर रहे थे, अभी क्या करेंगे, चाहिए चाहिए, क्योंकि यहां मैं भरपूर हूं। पहले मैं यहां खाली हूं तो फिजिकल चीजों को चाहिए चाहिए कर रहा हूं, लेकिन यहां भरपूर हो रहा हूं और यहां से चाहिए चाहिए। पहले हर चीज लेना है लेना है, अभी देना है देना है देना है। तो परिवर्तन हो गया। यह है एनर्जी का डिस्टॉर्टेड रूप को हम क्या कर रहे हैं, नॉर्मल में। यह है उसको प्रॉपर अमाउंट ऑफ चार्ज दे रहे हैं हम। प्रॉपर अमाउंट ऑफ चार्ज देते ही वो जो पीएवे की आवाज आ रही थी खत्म हो गई, खत्म हो गई थी ना आवाज। तो ऐसे प्रॉपर अमाउंट, मन आत्माभिमानी स्थिति मेंटेन करेंगे, प्रॉपर अमाउंट ऑफ चार्ज मिलेगा एनर्जी को, तो एनर्जी डिस्टार्ट नहीं होगी, क्रोध नहीं आएगा, लोभ नहीं आएगा। मोह में भी क्या होता है, मोह में हम क्या करते हैं, जैसे अर्जुन कहता है युद्ध के मैदान में खड़ा होकर, इनके बिना जीना भी क्या जीना होगा मेरा, इसलिए मुझे इनसे लड़ना नहीं है। लेकिन पूरी गीता तो उसी पे चली है, नष्टो मोह किया है। तो बाबा भी हमें क्या कहते हैं, मोह को स्नेह के रूप में बदल दो। और स्नेह का रूप माना, अब तक हम कहते थे इसके बिना मेरा जीना नहीं हो सकता है, लेकिन अब हम कहें बाबा और बाबा की सेवा के बिना मैं रह नहीं सकती, ये सच्चा स्नेह होगा। तो मोह किस में बदल जाएगा, स्नेह के रूप में। और पांचवा विकार अहंकार, माना ही दे अभिमान, जिसके लिए बाबा ने हमें ढेर सारे सब सम्मान दे दिए। हर दिन भी यहाँ पे सम्मान मिल रहा है, तो देह अभिमान से छुट्टी हो जाएगी। तो जो ये पांच विकार है माया के, जो विकराल रूप धारण करके हमारे पुरुषार्थ में हमें हरा देते थे, विघ्न खड़े कर देते थे, अभी हमारे आगे सहयोगी के रूप में सहयोग देंगे। लेकिन इसमें भी सफलता तब मिलेगी, बाबा ने कहा रोज सुबह तीन बिंदियों का तिलक लगाओ, सम्मान करना है ना उसका। तो ये जो मुझे अटेंशन भी आए इतना कि मैं हमेशा अपने आप को सोल कॉन्शियस बना के रखूं, उसके लिए बाबा ने कहा रोज सुबह तीन स्मृतियों का तिलक लगाए। कौन सी है वो तीन स्मृतियां, कौन सी है वो तीन स्मृतियां, मैं आत्मा बिंदी, मेरा पिता परमात्मा बिंदी, और ड्रामा में जो कुछ हो रहा है उसको बिंदी। जब ये स्टेज होगी, अर्थात जो हम योग करेंगे बाबा के साथ, हम कंप्लीट साइलेंस में रह पाएंगे, वरना तो कोई ना कोई चिंतन उठ ही जाता है, कंप्लीट साइलेंस नहीं होगी। तो फिर हम भले ही परमात्मा के पास परम धाम में जाके बैठे भी, उसके संग का रंग मुझे नहीं लग सकता है, उस स्थान का प्रभाव मुझ पर नहीं पड़ सकता है। और इन तीन बिंदियों का तिलक रोज सुबह हमें लगाना है। कितनी सिंपल विधि खुदा दोस्त हमें दे रहे। इससे और सरल कुछ हो सकता है पुरुषार्थ? सिर्फ बिंदी लगा दो। क्वेश्चन मार्क तैयार करने में भी सिखाना पड़ेगा बच्चे को, हाथ ऐसा घुमाओ न वैसा घुमाओ, और ऐसा करने के लिए तो बिना सिखाए वो लगा देगा। हाँ, तो वो खुदा दोस्त आया है और कहता है मेरे साथ परम धाम में आकर बैठ जाओ। अव्यक्त मूल्यों का कभी स्टडी करना, कभी वो ये नहीं भूलता है कि परम धाम में आके मेरे साथ बातें करो। झोपड़ी की बात आएंगी तो बोलेगा मेरे साथ बातें करो। परम धाम में ऊंचे बाप के पास ऊंची स्थिति में आकर बैठ जाओ, अर्थात आत्मा भी बिंदी, परमात्मा भी बिंदी, ड्रामा की हर घटना को बिंदी, तो मैं वहां कैसी रहूंगी? कंप्लीट मौन। और उस कंप्लीट मौन में उसकी जो ऊर्जा है वो मेरी तरफ आकर मुझे उसके लेवल तक पहुंचा देगी। इससे इजी और कोई पुरुषार्थ हो सकता है? हो सकता है? नहीं हो सकता है। और इसीलिए भट्टी में आपको हमने मौन रहने के लिए कहा था। हाँ, मौन का बहुत इम्पोर्टेंस है। बिना मौन के आंतरिक परिवर्तन बहुत ही बहुत मेहनत वाला हो जाएगा। लेकिन अगर बाबा ने इसीलिए कहा श्रीमत प्रमाण, बाबा ने श्रीमत दी है इसमें ही कल्याण होगा और मैं वैसा ही करूं, तो श्रीमत प्रमाण बाबा मुरली में कहते यथार्थ साधना उसको कहते हैं जहां शरीर भी स्थिर हो, जहां मन भी स्थिर हो, जहां बुद्धि भी स्थिर हो और जहां दिल भी स्थिर हो। ये इशारा नहीं दे रहे कंप्लीट मौन का? तो ऐसी स्थिति में जब हम परमधाम में होते हैं, बाबा की एनर्जी हमारे पास आकर हमारे को बाबा अपनी स्थिति तक पहुंचा देता है। ऐसे खुदा दोस्त का जितना शुक्रिया करें उतना कम है कि बहुत सरल विधि से माया रावण पर जीत पहनाकर हमें पतित से पावन बनाकर नई सतयुगी दुनिया में स्थापन करने के लिए हमें इस्तेमाल करता है। ओम शांति।